नमस्कार भारत, तारीख 27 दिसंबर, दिन मंगलवार, मैं हूं मोहन लाल शर्मा। नोटबंदी पर केंद्र सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने आज बुलाई विपक्षी दलों की बैठक।
प्रधानमंत्री जी ना ये बता रहे कि उन्होंने सहारा और बिड़ला से पैसा लिया या नहीं लिया। देश के ऐसे प्रधानमंत्री जो खाऊंगा ना खाने दूंगा का नारा देकर सत्ता में आए थे, उनके लिए इस प्रकार की बात बेमानी है।
बीबीसी हिंदी के वर्षांत पेशकश में आज सुनिए हिंदी के मशहूर साहित्यकार राजेंद्र यादव को। कैसा था उनका प्रेम जीवन?
मैंने बताया था वो एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियल घराने की महिला थी। सारा आकाश से हमारी उनकी दोस्ती शुरू हुई। बहुत दिनों तक हम मिले नहीं। जैसा मैंने शुरू में भी लिखा है कि शायद इसके पीछे हो सकता है कि मेरी अपनी इनफीरियरिटी हो।
लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, अपूर्व कृष्ण से। नोटबंदी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने आज विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है। हालांकि बैठक के पहले ही विपक्षी एकता पर सवाल उठ रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी दिल्ली आ रही हैं, मगर सीपीएम ने साफ कर दिया है कि वो इस बैठक में हिस्सा नहीं लेगी। वहीं राष्ट्रीय जनता दल ने कहा है कि वो मीटिंग में हिस्सा लेगी, मगर जनता दल यूनाइटेड ने अपना रुख साफ नहीं किया है। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे पर्ल हार्बर पर हुए जापान के उस हमले के 75 वर्ष बाद हवाई का दौरा कर रहे हैं, जिसके बाद अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया था। टोक्यो से रवाना होने से पहले उन्होंने कहा कि वे ये संदेश देना चाहते हैं कि जापान पिछली लड़ाइयों के दौरान हुई जातियां नहीं दोहराएगा। शिंजो आबे वहां अमरीका के राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ 1941 में हुए हमले में मारे गए 2400 नौसैनिकों के सम्मान में बने स्मारक पर जाएंगे। काले सागर में रविवार को रूस के एक सैन्य विमान की दुर्घटना के बाद एक व्यापक तलाशी अभियान चल रहा है। विमान पर 92 लोग सवार थे। इनमें अधिकतर लोग सेना के नृत्य और संगीत कलाकार थे, जो रूसी सैनिकों के लिए कार्यक्रम पेश करने सीरिया जा रहे थे। रूस के परिवहन मंत्री मैक्सिम सोकोलोफ ने कहा कि विमान के ब्लैक बॉक्स रिकॉर्डर की तलाश में बाधा आ रही है, क्योंकि इसमें रेडियो ट्रांसमीटर नहीं थे। साढ़े 3,000 से ज्यादा लोग, 39 जहाज, 135 गोताखोर और 7 पनडुब्बियों के अलावा हवाई जहाज और अन्य हवाई वाहन तलाशी के काम में जुटे हुए हैं। रूस के परिवहन मंत्री मैक्सिम सोकोलोफ के शब्द। तुर्की में विपक्ष के एक अखबार के कैफेटेरिया मैनेजर को राष्ट्रपति अर्दोगान का अपमान करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। सेनोल बुरान पर आरोप है कि उन्होंने ये कहा कि वो राष्ट्रपति अर्दोगान को कभी भी चाय नहीं पिलाएंगे। तुर्की के अखबार जमहूरियत की एक कॉलमनिस्ट ने इस गिरफ्तारी पर सवाल उठाए। इसका लोकतंत्र या सहनशीलता से कोई लेना देना नहीं। किसी आदमी की नाराजगी को आधिकारिक रिपोर्ट में दर्ज करना, ये कैसी है समझ, ये कैसी संस्कृति है और ये कैसी शिक्षा है? तुर्की के अखबार जमहूरियत के कॉलमनिस्ट सुकरान सोनर के शब्द। अमेरिका के शिकागो शहर की पुलिस का कहना है कि शहर में क्रिसमस और इसकी पूर्व संध्या पर गोलीबारी की घटनाओं में कम से कम 11 लोग मारे गए हैं। पुलिस के अनुसार अपराधी गिरोहों के आपसी संघर्ष से जुड़ी घटनाओं में 30 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। इन्हें मिलाकर इस साल शिकागो में लगभग 750 लोग मारे गए हैं, जिससे ये साल शहर के पिछले 2 दशकों के दौरान सबसे अधिक खून खराबे वाला शहर साल हो गया है। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र को दुखद बताया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र में अपार संभावनाएं थी, मगर ये लोगों के लिए मिलने, बात करने और अच्छा समय गुजारने का एक क्लब बनकर रह गया है। उन्होंने पिछले सप्ताह खुद सुरक्षा परिषद में इसराइल की आपत्ति करने वाले एक प्रस्ताव को टलवाने का प्रयास किया था, मगर यह प्रस्ताव शुक्रवार को पास हो गया, जिसके बाद ट्रंप ने यह चेतावनी दी है कि राष्ट्रपति बनने के बाद स्थिति अलग होगी। दुनिया का सबसे तेज जानवर चीता तेजी से विलुप्ति की ओर बढ़ रहा है। अमेरिका में नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के एक अध्ययन में कहा गया है कि चीतों और इंसानों के बीच संघर्ष बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वे सुरक्षित क्षेत्रों से बहुत बाहर तक आते जा रहे हैं। एकेडमी चीतों को विलुप्त प्राय घोषित करवाना चाहती है, ताकि दुनिया का ध्यान उनकी घटती संख्या की ओर जा सके। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत और आज मैं हूं आपके साथ मोहनलाल शर्मा। पिछले डेढ़ महीने से भारत में चर्चा का सबसे बड़ा विषय मोदी सरकार द्वारा 500 और 1000 रुपए के नोट बंद किए जाना रहा है। संसद का शीतकालीन सत्र हंगामे की भेंट चढ़ चुका है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पिछले कई दिनों से मोदी पर भ्रष्टाचार के सीधे आरोप मढ़ रहे हैं। नोटबंदी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने आज विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी दिल्ली में होंगी। कांग्रेस बाकी सहयोगी दलों को भी साथ लाने की कोशिश में है। बीबीसी संवाददाता वात्सल्य राय ने बात की कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला से।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। प्रधानमंत्री जी उनका जवाब हाँ या ना में देने से साफ तौर से पल्ला झाड़ते और बचते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ना ये बता रहे कि उन्होंने सहारा और बिड़ला से पैसा लिया या नहीं लिया, और ना ही प्रधानमंत्री निष्पक्ष जांच के लिए सहमत है। देश के ऐसे प्रधानमंत्री जो खाऊंगा ना खाने दूंगा का नारा देकर सत्ता में आए थे, उनके लिए इस प्रकार की बात बेमानी है।
कौन कौन इस मीटिंग में होगा, कौन नहीं होगा,
महत्वपूर्ण बात ये नहीं के कितने लोग एक ही मीटिंग में बैठे। महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोपों की निष्पक्ष जांच और नोटबंदी से देश के लोगों की तकलीफ, इस पर हमारी सैद्धांतिक और वैचारिक सहमति हो।
कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला। हालांकि इस बैठक से पहले ही विपक्षी एकता पर सवाल उठ रहे हैं। मार्क्सवादी पार्टी ने साफ कर दिया है कि वो इस बैठक में हिस्सा नहीं लेगी। विपक्षी जनता दल यूनाइटेड ने भी अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है। हालांकि राष्ट्रीय जनता दल का कहना है कि वो बैठक में हिस्सा लेगी। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मनोज झा।
एक तो मैं स्पष्ट तौर पर कह दूं कि राष्ट्रीय जनता दल इसमें भागीदारी कर रहा है, हिस्सेदारी कर रहा है। मुझे भाजपा का बेचैन होना समझ में आता है, लेकिन मीडिया के एक वर्ग में भी हैशटैग अपोजिशन डिस यूनिटी चलाया जा रहा है, जो उचित नहीं है। आप एक पृष्ठ पे हमेशा हों जरूरी नहीं है, आप एक किताब के साझा हिस्सा है, ये आवश्यक है।
ये थे राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मनोज झा। कांग्रेस ने संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान भी विपक्ष को एकजुट रखने की भरपूर कोशिश की थी। संसद सत्र खत्म होने के बाद भी कांग्रेस इस एकजुटता को बरकरार रखना चाहती है, लेकिन इस प्रक्रिया के पीछे कांग्रेस का मकसद क्या है? हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी से यही सवाल पूछा।
देखिए, कोशिश तो यही है कि इकट्ठे होके इसको सड़कों पर ले जाया जाए, और जो एकता पार्लियामेंट में दिखती थी, एकता तब तक थी जबकि आखिरी दिन सारे 15 पार्टियां विपक्ष की मार्च करके जाने वाले थे राष्ट्रपति भवन और उनको एक मेमोरेंडम देने वाले थे। लेकिन उस दिन राहुल गांधी जब प्रधानमंत्री से मिले किसानों के बारे में बात करने के लिए, उस एक चीज ने विपक्षी एकता को भंग कर दिया और कई पार्टियां फिर वो मार्च में नहीं गईं। दोबारा विपक्ष को इकट्ठा करने के लिए एक नई पहल राहुल गांधी ने की, लेकिन वाम दल भी अब नहीं आना चाहते हैं। जनता दल यू भी ऐसा लग रहा है कि वो भी नहीं आएंगे, और पार्टियां सपा बसपा ये क्या रुक लेती हैं देखने लायक होगा, मगर सब चीज जरा ठंडे बस्ते में चली गई है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये मीटिंग भी बिना प्रॉपर होमवर्क के की गई है। मीटिंग्स प्रक्रिया की शुरुआत नहीं होती, उसका अंत होता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बिना होमवर्क के एक मीटिंग बुला ली है और उससे संदेशा तो बहुत अच्छा नहीं जाएगा।
ऐसे में आपको क्या लगता है कि विपक्ष किसी तरह सरकार को दबाव में ले पाएगा?
आपको याद होगा जब नोटबंदी हुई तो ममता बनर्जी ने फोन करके सीताराम येचुरी से बात की थी कि मामला इतना गंभीर हो गया कि हमको मिलके काम करना पड़ेगा। संसद का सेशन जो विंटर सेशन था उसके दौरान कई बार सपा बसपा भी एक ही साइड में पाए गए हैं। एक जमाना था जब एंटी कांग्रेसिज्म था, अब वो दौर आ गया है जबकि भाजपा मेन पार्टी है, डोमिनेंट पार्टी है, और विपक्षी दल जानते हैं कि उनको अगर भाजपा को घेरना है तो फिर उनको हाथ मिला के कदम मिला के चलना पड़ेगा। अगर ये नहीं हो पाता है तो भाजपा के लिए तो बहुत ही अच्छा है, उनके लिए तो बल्ले बल्ले है। इसमें एक और चीज भी है कि लीडरशिप कौन लेगा। ओवरऑल एक सूत्रधार की जरूरत है विपक्षी एकता के लिए, वो सूत्रधार कौन होगा ये अभी स्पष्ट नहीं हुआ।
विपक्षी एकता के लिए एक सूत्रधार की जरूरत है, ये कहना है नीरजा चौधरी का, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। कार्यक्रम में अब अखबारों का जिक्र कर लेते हैं। अपूर्व कृष्ण अखबार खंगाल चुके हैं, मेरे सामने मौजूद हैं। अपूर्व, क्या कह रहे हैं हिंदुस्तान के अखबार, वही नोटबंदी?
जी मोहनलाल जी, आज भी सभी अखबारों में नोटबंदी की, ये जो हमने अपनी रिपोर्ट की लीड की थी कि आज कांग्रेस ने विपक्षी दलों की एकता के बारे में बैठक बुलाई है, उसका जिक्र सभी अखबारों में है। लेकिन नोटबंदी से जुड़ी और भी खबरें हैं। अब मिसाल के तौर पर टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इन सब अखबारों में एक खबर है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के नेताओं से उनके एक अकाउंट में पुराने नोटों में 104 करोड़ रुपए जमा कराने के बारे में पूछताछ करने की तैयारी कर रहा है। तो अखबार लिखता है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, उनके सूत्रों ने उन्हें बताया है कि 2 दिसंबर से 9 दिसंबर के बीच बहुजन समाज पार्टी BSP उनके एक अकाउंट में, दिल्ली में एक अकाउंट था, उसमें 104 करोड़ रुपए जमा कराए गए। तो इस बारे में पुराने नोट 500 और 1000 के, जिन पे अब बैन लगा हुआ है, तो उसके बारे में पूछताछ की जाएगी। नोटबंदी से जुड़ी एक और खबर जो है वो भी कई अखबारों में है, जैसे हिंदुस्तान टाइम्स, उसमें लिखा है कि सरकार जल्दी ही एक अध्यादेश ला सकती है जिससे कि 30 दिसंबर के बाद ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है जिनके पास बड़ी मात्रा में 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट मिलेंगे। अखबार लिखता है कि ऐसी रिपोर्टें हैं कि 30 दिसंबर के बाद अगर किसी भी व्यक्ति के पास पुराने 500 और 1000 के 10-10 नोट से ज़्यादा पाए गए, तो 10-10 नोट से ज़्यादा पाए गए तो उन्हें कम से कम 50,000 रुपये या उसके पास जितनी राशि होगी उसका 5 गुना जुर्माना लग सकता है।
अगर नोटबंदी की खबर को छोड़ दें तो इसके अलावा और कोई बड़ी खबर?
इंडियन एक्सप्रेस है, उसमें लिखा गया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने माओवादियों के आत्मसमर्पण करने की संख्या में पिछले साल की तुलना में 3 गुना तेजी दर्ज की है, लेकिन साथ ही साथ इसी दौरान माओवादी हिंसा से जुड़ी घटनाओं में आम लोगों के मारे जाने की संख्या में भी तेजी आई है, जिनमें अधिकतर कथित तौर पर पुलिस मुखबिर थे। और एक और मोहनलाल खबर, इन सब खबरों से अलग हिंदू में एक अखबार छपी है कि मशहूर फिल्म निर्देशक अधूर गोपाल कृष्णन ने सरकार को एक पत्र लिखकर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के जो निर्णायक मंडल है उनके चयन पर अपनी आपत्ति जताई है।
बहुत बहुत शुक्रिया अपूर्व कृष्ण। और अब कार्यक्रम में हम बात करेंगे BBC के वर्षांत कार्यक्रम की। हिंदी के मशहूर साहित्यकार राजेंद्र यादव की बात करेंगे। राजेंद्र यादव नई कहानी के दौर के प्रमुख कहानीकारों में से हैं, जहां लक्ष्मी कैद और टूटना जैसी कई प्रसिद्ध कहानियां, सारा आकाश, उखड़े हुए लोग, शह और मां जैसे उपन्यास लिखे। हंस पत्रिका का संपादन किया। उन्होंने स्त्री और दलित विमर्श को एक नई पहचान शक्ति दी। अपनी बेबाक टिप्पणियों के लिए हमेशा पहचाने जाते रहे। 2013 में 84 साल की उम्र में उनका निधन हुआ था। राजेंद्र जी से हमारे सहयोगी वरिष्ठ सहयोगी रेहान फजल ने एक साक्षात्कार किया था, उसी पर आधारित विदित मेहरा की रिपोर्ट सुनिए।
ये संगीत है साल 1969 में बनी बासु चटर्जी की फिल्म सारा आकाश का। इस फिल्म में एक ऐसे युवा की कहानी है जिसने आजाद भारत में सपने देखे थे कुछ करने के, कुछ पाने के। आश्वासन था कि अगर जज्बा हो तो उसके सामने पाने को सारी दुनिया और सारा आकाश है। लेकिन जीवन की परिस्थितियों में वो इस कदर घिर जाता है कि पारिवारिक जीवन की झंझावात में उसके सपने टूटकर बिखर जाते हैं। ये फिल्म आधारित थी हिंदी के मशहूर साहित्यकार राजेंद्र यादव के पहले उपन्यास सारा आकाश पर, जो खूब चर्चित हुई थी। राजेंद्र यादव हिंदी की नई कहानी की धारा के प्रमुख साहित्यकारों में थे, जिन्होंने अपनी कहानियों से तत्कालीन समाज और उसमें संघर्ष करते व्यक्ति और उसके भीतर के द्वंद्व को एक नई अभिव्यक्ति दी थी। 28 अगस्त 1929 को जन्मे राजेंद्र जी का विद्यार्थी जीवन आगरा में बीता था। रेहान फजल के साथ साक्षात्कार में अपने उन दिनों के बारे में राजेंद्र जी कहते हैं,
उन दिनों तो हम लोग तो अच्छे विद्यार्थियों में माने जाते थे और चूंकि थोड़े से सजग और उस तरह के थे तो मेरा ख्याल है कि हम तो काफ़ी सीरियस रहने वालों में थे, लेकिन जैसे स्टूडेंट्स होते हैं सब जगह, वो माहौल उतना राउडी तो नहीं था उस समय, लेकिन था, एक खुला वातावरण था, मिलना जुलना था, नए नए हम लोगों का जो को एजुकेशन में साथ साथ पढ़ना हमारे लिए एक बड़ी थ्रिलिंग चीज़ थी। आगरा कॉलेज, पता नहीं आपको मालूम है या नहीं, हिंदुस्तान के 2 या 3 सबसे पुराने कॉलेजेस में हैं। तो उसमें लेकिन ज़्यादातर लड़कों का कॉलेज था, लड़कियाँ कोई बहुत कम होती थी, लड़कियों का ख़ास तौर से कॉलेज को एजुकेशन वाला सेंट जॉन्स कॉलेज था। तो इन दोनों कॉलेजेस के बीच एक ख़ास तरह का प्रतियोगिता और प्रतिस्पर्धा बनी रहती थी। हर एक आगरा कॉलेज वाले स्टूडेंट्स की इच्छा होती थी कि वो घूमने टहलने, लड़कियों को देखने वगैरह मिलने सेंट जॉन्स कॉलेज जाए।
छात्र जीवन में ही परिपक्व हो चुके राजेंद्र यादव ने अपनी साहित्यिक यात्रा में कई चर्चित कहानियां और उपन्यास तो लिखे ही, लेकिन उनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा प्रेमचंद द्वारा शुरू की गई हंस पत्रिका को दोबारा से शुरू करना। ये पत्रिका 1953 में बंद हो चुकी थी और राजेंद्र जी ने 1986 में उसे दोबारा शुरू किया। इस पत्रिका को लेकर उनमें एक अलग तरह का जुनून था और उन्होंने समाज के दबे कुचले लोगों और स्त्रियों से जुड़े सवालों को हंस के जरिए एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। उन पर संस्मरण लिखने वाली मैत्रेयी पुष्पा कहती हैं,
और मैं उनके लेखन से बजाय कहानी और उपन्यासों के मुकाबले मैं उनके उस लेखन से ज्यादा प्रभावित हुई जो था कांटे की बात, जो उन्होंने विमर्श चलाए, है ना। हम स्त्री हैं तो उन्होंने लिखा आदमी की निगाह में औरत। इस तरह के जो हंस जब किया तो इस तरह के विमर्श चलाए, वो बहुत अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और आगे चल के देखिए उनका कितना महत्व समझ में आएगा लोगों के। खैर, उपन्यास तो सब लिख लेते हैं, सभी लिखते हैं, तरह तरह से लिखते हैं। उन्होंने भी लिखे समाज के लिए जो सामाजिक जो रीतियाँ हैं या जो पाखंड हैं, जो उनके या राजनीतिक वो राजनीतिक जो व्यवस्थाएं हैं उनके जो पसंद आती हैं, ठीक है, नहीं पसंद आती उनके खिलाफ लिखते हैं, ये तो बहुत लोग कर लेते हैं। लेकिन इस तरह का राजन जी का जो अवदान था समाज के लिए, साहित्य के लिए, ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। मेरे ख्याल में ये जो समय पलट डाला उन्होंने, साहित्यिक समय पलट डाला, सामाजिक समय पलट डाला, वो तो बिरले होते हैं राजन यादव।
दलितों और स्त्रियों के संदर्भ में लिखते हुए राजेंद्र जी कई बार ऐसी बातें कह जाते थे जिन पर विवाद हो जाता था। एक बार उन्होंने राम कथा के प्रसंग में हनुमान को पहला आतंकवादी कह दिया था, जिस पर काफी हंगामा बरपा था और मुकदमे तक हो गए थे।
मेरे ऊपर उस हनुमान को लेकर चार जगह से लगभग मुकदमे, दो बाकायदा मुकदमे हैं और दो जगह से थ्रेट है। दिक्कत यह है कि जितने ये धर्मांध किस्म के तालिबान होते हैं, ये अनपढ़ होते हैं, अपनी तरह से सोचते नहीं हैं। जहाँ मैंने लिखा था वहाँ ये लिखा था कि रावण के दरबार में हनुमान पहला आतंकवादी था, अंग्रेजों की निगाह में भगत सिंह आतंकवादी था। अगर हनुमान आतंकवादी नहीं था तो क्या वो फूलमालाएं लेकर रावण के यहाँ गया था, या रावण ने उसे बुलाया था पालकी भेजकर? वो राम की तरफ से वहाँ पर एक तरह से कहना चाहिए कि ये बताने के लिए कि भविष्य तुम्हारा ये है, ये शिक्षा देने के लिए गया था। तो इन अनपढ़ों ने उसके पूरा नहीं पढ़ा उसे।
राजेंद्र जी हंस में अपने संपादकीय के जरिए समाज में हाशिए के लोगों की बातें करते थे और उन लोगों की बात करते थे जिन्हें साहित्य में वैसा स्थान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। और जब उन्होंने ऐसे लोगों के पक्ष में ऐतिहासिक पुस्तकों से उदाहरण देकर बात की तो उन्हें कई बार विवादों का सामना करना पड़ा।
देखिए, मुझे मेरे ऊपर यारों पता नहीं कैसे चश्मा हो गया है कि मुझे विवाद प्रिय है। मैं ये मानता हूँ कि बहुत कुछ है जिंदगी में और साहित्य में जिसको दबा दिया गया है, बहुत कुछ ऐसा है जो कहाँ जाना चाहिए था। हमारा साहित्य सिर्फ कुछ एलिटिस्ट किस्म के बहुत मध्यवर्गीय लोगों का साहित्य रहा है। हमारा इतिहास राजा महाराजाओं का इतिहास रहा है, उसमें जो 80% छूट गया है, जो हाशिए के लोग हैं जिनकी कोई आवाज़ नहीं होती, स्त्रियाँ थे, दलित थे, पिछड़े थे, आदिवासी थे, और मैं कहूँगा कि अल्पसंख्यक थे। अगर मैं उनकी बात कहता हूँ और अगर ये कहता हूँ कि ये हम जो कुछ पढ़ते रहे वो बहुत एकहरा, सतही और बायस्ड है, तो उसको लेकर विवाद होता है।
राजेंद्र यादव मानते थे कि एक निश्चित ढर्रे में रहकर जीवन जीना दरअसल इंसान की साहित्यिक रचनात्मकता को कुंद करता है और शायद इसीलिए वो नौकरी के पक्ष में नहीं थे।
देखिए, लिखना मैंने एमए किया था 51 में, मैंने टॉप किया था एमए में, हिंदी में था, हमारे एक गुरुजी थे जो पंडित जगन्नाथ तिवारी, उनकी इच्छा थी कि मैं वहाँ पढ़ाऊँ। उस समय आगरा कॉलेज में अध्यापक होना एक खासा प्रेस्टिजियस काम था, लेकिन हमारी दो किताबें तीन किताबें छप चुकी थी, कहानियाँ छप चुकी थी, हम अपने को कहानीकार और साहित्यकार मानने लगे थे और उस तरह की चीज़ें पढ़ने लगे थे देशी विदेशी, तो हमको लगता था कि नौकरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो नौकरी है वो आदमी को एक तो एक रिपीटेटिव कार्यक्रम आदमी की मौलिकता को कुंद करता है, दूसरा कहीं ना कहीं कोई दबाव ऐसा होता है जो आपकी स्वतंत्रता पर अभिव्यक्ति पर अंकुश लगाता है।
चर्चा और विवादों में रहने वाले राजेंद्र यादव ने हिंदी की मशहूर लेखिका मन्नू भंडारी से शादी की थी। मन्नू भंडारी के उपन्यास आपका बंटी पर एक फिल्म भी बनी थी समय की धारा, जो काफी चर्चित रही थी। लेकिन मन्नू भंडारी राजेंद्र जी के जीवन में आने वाली अकेली महिला नहीं थी जिनसे उन्होंने प्रेम किया था। उनसे पहले वो दो अन्य महिलाओं के प्रति भी आकर्षित रहे थे। मीता जी से उनकी मुलाकात आगरा में हुई थी।
मैं ट्यूशन पढ़ाया था उसे, और जिस चीज से मैं सबसे ज्यादा चमत्कृत हुआ था वो ये कि एक पन्ना पढ़वाता था मैं उसे और किताब वापस रख देता था, वो उसे वर्बेटम सुना देती थी, शब्द शह जो उसने सुना है या पढ़ा है दोनों हाथों से लिखती थी, और भयंकर आत्मविश्वास, क्योंकि घर में सबसे बड़ी थी। और फिर संयोग से हुआ ये कि कॉलेज की लड़कियों कॉलेज की प्रिंसिपल हो गई। ये अधिकार की जगह रहने में और उस आत्मविश्वास से मैं कहीं डरता था। मुझे लगता था कि मिलने बीच बीच में मिलना ठीक है, लेकिन अगर मैं साथ रहा तो शायद इतनी डोमिनेटिंग कहूँ मैं महिला के साथ निर्वाह करना मुश्किल होगा, क्योंकि जो सिर्फ अपनी स्वेच्छा से और अपनी इच्छा से और अपने हिसाब से चीजों को करती हैं।
मैत्रेयी पुष्पा के मुताबिक राजेंद्र जी उनके जीवन में आने वाली महिलाओं में मीता को ही ढूंढते रहे, क्योंकि वो उन्हीं से सच्चा प्रेम करते थे और इस बात से परेशान रहे कि उन्होंने तो मन्नू भंडारी से शादी कर ली लेकिन मीता ने कभी शादी नहीं की।
राजेंद्र जी उसी मीता के खोज में जो खो गई थी उनसे, और उन्होंने शादी की थी मन्नू भंडारी से, लेकिन मीता खो गई थी उनसे। बार बार उन्होंने मीता को पाना चाहा, बार बार। कुछ गिल्ट भी था अंदर कि मैंने शादी कर ली, मीता ने नहीं की। उसका वो ऐसे ही बूढ़ी हो गई, उन्हीं के प्रेम में ही बूढ़ी हो गई। तो ये गिल्ट भी था, ये चाहना भी थी कि मीता मुझे नहीं मिली। हर स्त्री में जिनसे भी उनके संबंध रहे, पास के या दूर के, उसमें उन्होंने मीता को ही खोजा, मुझे ऐसा लगा। लोगों का कुछ भी हो सकता है नजरिया, लेकिन मेरा नजरिया ये रहा कि वो मीता की खोज में ही इधर उधर भटके, तबाह भी हो गए और बर्बादी की कगार पे आ गए, लेकिन मीता की खोज पूरी नहीं हुई।
मन्नू भंडारी से मुलाकात से पहले राजेंद्र जी के करीब आने वाली दूसरी महिला थी हेमलता जी। राजेंद्र जी ने हेमलता जी के साथ अपने संबंधों को याद करते हुए कहा था कि वो अपनी खुद की कमियों की वजह से हेमलता के साथ संबंधों को आगे नहीं बढ़ा सके।
मैंने बताया था वो एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियल घराने की महिला थी, साराकाश से हमारी उनकी दोस्ती शुरू हुई। बहुत दिनों तक हम मिले नहीं, जैसा मैंने शुरू में भी लिखा है कि शायद इसके पीछे हो सकता है कि मेरी अपनी इनफीरियरिटी हो। ये मेरा जो एक्सीडेंट वाला घटना, इसको लेकर मैं नहीं चाहता था कि उन्हें धक्का लगे मुझे देखकर। वो शायद इसीलिए हम लोग बचते रहे, साल डेढ़ साल हम लोग नहीं मिले। पत्र व्यवहार बहुत निरंतर था, और चूंकि वो दुनिया भर में घूमती थी, आज कलकत्ता, कल बम्बई, दार्जिलिंग, कभी कहीं कभी गए, और नियम था कि वो या तो चिट्ठी लिखेंगे हफ्ते में एक बार या टेलीफोन पर बात करेंगे। वो अजीब पागलपन का और रोमांटिक था जिसको देखा नहीं था हमने, लेकिन कहीं उनको हताश, हमें मनु से जब शादी हो गई तो थोड़ी निराशा हुई होगी। वो अमेरिका चली गई एक कोर्स करने के लिए, बाद में हमारा बहुत दिनों तक पत्र व्यवहार नहीं हुआ। शी डिडंट अटेंड माय मैरिज बिल्कुल, और उस पर कोई संदेश तक उन्होंने नहीं भेजा। आप सोचिए, जो हफ्ते में एक बार फ़ोन करती थी, चिट्ठी, सैकड़ों चिट्ठियाँ आज भी मेरे पास हैं। तो इस तरह से अब ये कहूँगा कि कुछ घाव ही हैं जिंदगी में जो तस्वीरें बोता चंद सुने को खतूत।
मीता और हेमलता जी के साथ राजेंद्र जी के संबंध आगे ना बढ़ सके क्योंकि उन्हें लगता था कि प्रेम तक तो ठीक है लेकिन साथ रहकर जीवन का निर्वाह करना संभव नहीं हो सकेगा। लेकिन कलकत्ता में जब उनकी मुलाकात मन्नू भंडारी से हुई तो उनमें उन्हें जीवन साथी बनने की संभावना नजर आई।
मन्नू भंडारी से तो ऐसा हुआ, कलकत्ते में था तो मेरे मित्र थे एक खेतान, वो कॉलेज के उस स्कूल के चेयरमैन थे जहाँ मन्नू पढ़ाती थी। उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि वहाँ की लाइब्रेरी को मैं अपडेट कर दूँ, मैं वहाँ लिस्ट किताबें देखने और लिस्ट बनवाने, वो संयोग से मन्नू उसकी इंचार्ज थी। तो हम लोगों ने किताबें छांटना तो अलग किया, आपस में किताब लिखने की बात करते रहे, फिर एक दूसरे के निकट आए, फिर कलकत्ते में मिलना जुलना हुआ ऐसे ही। फिर मुझे लगा कि शायद मन्नू के साथ मेरा निर्वाह हो सकेगा।
लेकिन मन्नू भंडारी के साथ हुआ प्रेम और शादी भी चिरस्थायी नहीं बन सके और जीवन में वो मोड़ भी आया जब दोनों ने अलग अलग रहने का फैसला कर लिया। खुद राजेंद्र यादव का मानना था कि वो अच्छे पति नहीं थे।
मेरा ख्याल है कि मैं पति बहुत अच्छा नहीं हूँ। दिक्कत यह है कि लिखने की दुनिया ने और पढ़ने की दुनिया ने मुझे इतना अपने साथ कैद कर रखा है कि मैं दूसरों की बातें सोच नहीं, दूसरों के लिए बहुत फीलिंग मेरे मन में नहीं सूख गई है। ठीक है, सहानुभूति महसूस कर सकता हूँ लेकिन उसके लिए अगर मुझे अपना रूटीन एक दो दिन से ज़्यादा बदलना पड़े तो मुश्किल हो जाएगा। मैं बहुत ख़राब पति हूँ।
राजेंद्र यादव अपनी वैवाहिक जिंदगी में भले ही सफल ना रह सके लेकिन साहित्य की दुनिया में उन्होंने एक अलग मुकाम हासिल किया। जब तक जीवित रहे साहित्य को एक अलग दिशा देने का प्रयास करते रहे। जीवन के सांध्य काल में हंस का संपादन और साहित्यिक विमर्श का हिस्सा बनने के अलावा उन्होंने एक ही शौक पाला और वो था बैठकबाजी का, जिसमें दोस्तों के साथ कुछ सुकून के पल गुजारते हुए भी वो समय समाज और साहित्य पर ही गंभीर चर्चाएं किया करते थे।
पहले जो भी रहे होंगे पिछले कुछ दिनों से 10-12 साल से या 15 साल से दिल्ली आने के बाद, हंस निकालने के बाद, मैं कहूँगा कि मेरा एकमात्र शगल बैठकबाजी है। अब चूंकि मैं मयूर विहार चला गया हूं तो मयूर विहार के लोग ज़्यादा हैं। दुर्भाग्य या संयोग से ये कहिए कि मैं अकेला हूं घर में, नौकर है, सबके अपने परिवार हैं, किसी की बीवी उन्हें नहीं दारू पीने देती, सब लोग इस चक्कर में रहते हैं कि मेरे यहाँ आ जाएं। तो लोग ये समझते हैं कि मैं बहुत कोई पैसे वाला अंधा रोज नवाबों की तरह से पार्टियाँ दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। बड़ा सब पंचायती काम है, वो जो है सिर्फ कभी कभी तो मुझे पानी और गिलास ही का इंतजाम करना पड़ता है, बाकी सब लिए चले आते हैं। मेरा नंबर 2-3 महीने बाद आता है और उसमें मेरा ख्याल है कि वी सेल्डम टॉक नॉनसेंस, यानी अगर उनकी रिकॉर्डिंग की जाए तो मेरा ख्याल है कि सम ऑफ द फाइनेस्ट टॉक्स या डिस्कशंस हमारे घरों में हुए हैं। तो मेरा शौक तो ये है।
जीवन भर दलितों और स्त्रियों को साहित्यिक चर्चा के केंद्र में लाने का प्रयास करने वाले राजेंद्र जी का 28 अक्टूबर 2013 को 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। मैत्रेयी पुष्पा मानती हैं कि नए लेखकों को प्रोत्साहित करने वाला और उंगली पकड़कर उनका मार्गदर्शन करने वाला राजेंद्र यादव जैसा शख्स शायद ही कोई दूसरा होगा। विदित मेहरा, BBC दिल्ली।
BBC हिंदी सेवा की वर्षांत प्रस्तुति। और अब मैं कार्यक्रम में आपको बताता हूं कि जो bbchindi.com का जो पेज है उस पर हमारी कौन सी खबरें हैं। बेनजीर पाकिस्तान की मिसाइल मदर। आज ही के दिन 2007 में बेनजीर भुट्टो की रावलपिंडी शहर में हत्या हुई थी। इस खबर को पढ़ने के लिए आप bbchindi.com पर आ सकते हैं। इसके अलावा एक और खबर है, 100 करोड़ी फिल्मों के दबंग हैं सलमान। यदि आप इस खबर को पढ़ना चाहें तो bbchindi.com पर आइए। कार्यक्रम में इससे पहले कि हम आपसे विदा लें मुख्य समाचार फिर से सुनते हैं।
नोटबंदी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने आज दिल्ली में विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है। हालांकि बैठक के पहले ही विपक्षी एकता पर सवाल उठ रहे हैं। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे पर्ल हार्बर पर हुए जापान के उस हमले के 75 वर्ष बाद हवाई का दौरा कर रहे हैं जिसके बाद अमरीका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया था। कालीसागर में रविवार को रूस के एक सैन्य विमान की दुर्घटना के बाद एक व्यापक तलाशी अभियान चल रहा है। विमान पर 92 लोग सवार थे। तुर्की में विपक्ष के एक अखबार के कैफेटेरिया मैनेजर को राष्ट्रपति अर्दोगान का अपमान करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। और अमेरिका के शिकागो शहर की पुलिस का कहना है कि शहर में क्रिसमस और इसकी पूर्व संध्या पर गोलीबारी की घटनाओं में कम से कम 11 लोग मारे गए हैं।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के संक में इतना ही। आज स्टूडियो संभाल रहे थे दीपक जसरोठिया। शाम 7:30 बजे दिन भर कार्यक्रम लेकर हाजिर होंगे। मोहनलाल शर्मा को विदा दें। नमस्कार।